स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 21 नवंबर और दिन गुरुवार। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर संसद में हंगामा।
ये स्कीम सिर्फ लोकसभा के जो आम चुनाव है उस तक सीमित थी, पर विडंबना की बात है।
नौरत्ना बीपीसीएल समेत 5 सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने का फैसला।
ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है दरअसल क्या है, ये सरकार की संपत्ति बेची जा रही है। इसको बेचने के बाद सरकार उस पैसे का क्या करती है, ये बहुत सबसे गंभीर सवाल है और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं।
दिल्ली में पानी की गुणवत्ता को लेकर आप और बीजेपी आमने सामने।
बिल्कुल साफ आ रहा पानी, शिकायत फालतू है, बेकार में करो तो क्या फायदा। हाँ, हमारी टंकी से लिया गया।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। आज संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन कांग्रेस ने दोनों सदनों में इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को उठाया और आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए कारोबारी और अमीर लोग सत्ताधारी पार्टी को चंदा देकर राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे। कांग्रेस के सदस्यों ने लोकसभा से वॉकआउट किया, जबकि हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। बीते 1 दशक में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विक्टोरिया में रेड अलर्ट जारी किया है। पूरे देश में अग्निशमन कर्मचारी करीब 200 जगहों पर जंगलों में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। खतरे को देखते हुए जंगलों के करीब रहने वालों को प्रशासन ने दूर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। वहीं आग के कारण उठते धुएं की चादर सिडनी तक पहुंच गई है। प्रशासन ने पानी के इस्तेमाल पर भी पाबंदियां लगाई हैं और कहा है कि आग के कारण नदी और तालाबों का पानी सूख रहा है। इंसान के साथ जानवर भी आग के कारण परेशान हैं। एक आकलन के अनुसार अब तक कम से कम 350 कोआला की मौत हो चुकी है। उत्तरी सिडनी में रहने वाले रायन टाटे जानवरों को बचाने का काम करते हैं। वो बताते हैं,
It's really heartbreaking to see, you know, I can't get my son to school on certain days.
जो हालात हैं वो दिल तोड़ने वाले हैं। कुछ दिन तो मैं अपने बच्चे को स्कूल तक नहीं छोड़ पाता हूँ। जंगल के पास से गुजरने वाले कई रास्तों को बंद कर दिया गया है और मुझे पता है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बड़ी संख्या में कोआला भी पाए जाते हैं। आग के कारण कोआला मर रहे हैं और उनके साथ सांप और कंगारू भी मौत का शिकार बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक निवासी रायन टाटे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु ऊर्जा निगरानी संगठन IAEA ने कहा है कि एजेंसी के अधिकारियों को ईरान में यूरेनियम मिला था, जिसके बारे में अब तक ईरान ने कोई जानकारी नहीं दी है। संगठन का कहना है कि जिस जगह पर यूरेनियम पाया गया था वो जगह परमाणु संवर्धन करने वाली जगहों की सूची में नहीं है। हालांकि बीते साल इसराइल ने कहा था कि तेहरान के पास मौजूद ये जगह परमाणु हथियार रखने का ईरान का खुफिया ठिकाना हो सकता है। ईरान ने इसके उत्तर में उस वक्त कहा था कि जिस ठिकाने की बात हो रही है वो कारपेट साफ करने की जगह है। IAEA के कार्यकारी अधिकारी कर्नल फेरूटा ने कहा है कि ईरान को तुरंत इस मामले को निपटाने की जरूरत है। अमरीकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग जांच से जुड़ी सार्वजनिक सुनवाई आज भी चली। आज सदन में अमरीका के एक राजदूत गॉर्डन सोनलैंड ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जो बिडेन के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर दबाव बनाया था। उन्होंने कहा कि ट्रंप का आदेश उन्हें उनके निजी वकील रूडी गुइलियानी ने दिया था। ट्रंप अब तक खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ी सारा इलियोट ने बीबीसी से कहा कि महाभियोग जांच के कारण ट्रंप की छवि पर कुछ असर पड़ा हो, इसे लेकर अमेरिका के लोगों की राय बटी हुई है।
If you did not like Donald Trump to begin with, you'd probably think so. But if you think this is just a win-
अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते तो शायद आपको लगेगा कि उनकी छवि पर असर पड़ रहा है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो पाएंगे कि डेमोक्रेट नेता उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें म्यूलर की जांच रिपोर्ट से जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। ये केवल एक कंगारू कोर्ट है और नैन्सी पेलोसी ने जैसे मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की है उससे लगता है कि कुछ दलीलों को सुना नहीं जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं से वोट कैसे करवाएंगी। रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ी सारा इलियोट। इसराइल के राष्ट्रपति रूबिन रिवलिन ने औपचारिक तौर पर देश की संसद से कहा है कि वो इस साल तीसरी बार चुनाव की संभावनाओं को खत्म करे और नई सरकार बनाने की राहें तलाशे। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी के कार्यक्रम दिन भर में और मैं हूं इकबाल अहमद। آج ہے نومبر کی 21 تاریخ اور دن ہے گروار. اس وقت ہو چکے ہیں بھارت میں شام کے 7:34:45. آپ اس کارکرم کو ریڈیو کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل فون پر بھی لائیو سن سکتے ہیں. کارکرم کی شروعات الیکٹورل بانڈ کو لے کر مچے بوال سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سنسد کا شیت کالین ستر جاری ہے. آج سنسد کے دونوں سدنوں میں کانگریس نے الیکٹورل بانڈ کے مدے کو اٹھایا. کانگریس نے کہا کہ یہ نہ کیول سرکاری بھرشٹاچار کو سویکرتی دینا ہے بلکہ اس سے تو پونجی پتیوں کو سیاست میں سیدھے دخل اندازی کرنے کا موقع دینا ہے. لیکن سرکار نے ان تمام آروپوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ وپکش اس پر کیول راجنیتی کر رہا ہے. دراصل بھارت میں راجنیتک دلوں کو بھلے ہی اپنی آئے کا بیورا سارجنک کرنا ہوتا ہے لیکن ان کی فنڈنگ کو لے کر پاردرشتا نہیں ہوتی. بیتے ورش مودی سرکار نے الیکٹورل بانڈ جاری کیے تھے جن کے ذریعے ادیوگ کاروباری اور عام لوگ اپنی پہچان بتائے بنا چندہ دے سکتے ہیں. دان کرتاؤں نے ان بانڈ کے ذریعے 150 ملین ڈالر یعنی قریب 10 ارب 35 کروڑ روپے کا چندہ دیا اور رپورٹوں کے مطابق ان میں سے زیادہ تر رقم صرف اور صرف بی جے پی کو ملی ہے. آن لائن پورٹل ہفنگٹن پوسٹ کے علاوہ انیہ بھاشاؤں میں پترکار نتن سیٹھی کی رپورٹوں کو چھپنے کے بعد یہ بوال اور زیادہ ہو گیا ہے. سنیے ونیت کھرے کی رپورٹ.
پچھلے سال پردھان منتری نریندر مودی سرکار نے الیکٹورل بانڈز جاری کیے تھے جن کے ذریعے ادیوگپتی کاروباری اور عام لوگ اپنی پہچان بتائے بنا چندہ دے سکتے ہیں. اس وقت کے وت منتری ارون جیٹلی نے اسے الیکشن فنڈنگ میں پاردرشتا لانے والا قدم بتایا تھا.
انونیمس ڈونیشنز ہیں وہ سنکھیا زیادہ رہتی ہے اور اس لیے کیش میں ان نون سورسز سے پیسہ آئے, راجنیتک دل اسی کو خرچ کرے جس میں نہ کلین منی ہے اور نہ ٹرانسپیرنٹ منی ہے, میکینزم ہے. اس ویوستھا کو بدلنے کے لیے جو ویکلپک ویوستھا بنائی ہے وہ الیکٹورل بانڈز کی ہے.
میں نے اس وشے پر رپورٹیں پرکاشت کرنے والے پترکار نتن سیٹھی سے پوچھا الیکٹورل بانڈز آخر کیا ہیں.
کہ ایک آدمی میں ہوں, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ دینا چاہتا ہوں, ایس بی آئی کی ایک برانچ ہے جس پہ بولا گیا کہ یہاں جا کے آپ خرید سکتے ہو, میں وہاں پہ 100 روپے دیتا ہوں اور 100 روپے کا ایک بانڈ لے لیتا ہوں. بانڈ ایک طریقے سے جیسے آپ پوسٹ آفس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے 100 روپے جمع کیے, اس قسم کا ایک سرٹیفکیٹ آپ کو مل جاتا ہے جس پہ آپ کا نام نہیں ہے تو کسی کو نہیں پتا کس نے خریدا ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ 15 دن کے اندر مجھے, میں جا کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو دے دیتا ہوں, پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ایس بی آئی کے کسی اکاؤنٹ میں ڈالتی ہے اور اس کو اس کے برابر حساب میں کیش مل جاتا ہے. تو ایک طریقے سے یہ ایک سیکرٹ راستہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا چلتا, صرف پارٹی اور ڈونر کے بیچ چھوڑ کے کہ کس نے لیا کس کو دیا.
نتن سیٹھی کی رپورٹوں کے مطابق آر بی آئی اور چناؤ آیوگ نے اس پر سوال اٹھائے لیکن سرکار نے ان کی ایک نہیں سنی.
آر بی آئی نے بہت صاف طریقے سے سرکار کو بولا تھا کہ آپ یہ نہ کریں, جبکہ آر بی آئی کو اسے بتایا گیا تھا بجٹ میں آنے سے 2 دن پہلے ایک سیٹرڈے کو, پھر بھی آر بی آئی اتنا گھبرایا کہ انہوں نے سنڈے کو چٹھی لکھ کے بولا کہ آپ یہ مت کریے. سرکار نے اس کو اندیکھا کر کے الیکٹورل بانڈ بنا دیے. الیکشن کمیشن نے بھی یہ سب ہونے کے بعد سرکار کو لکھا اور صاف بولا کہ آپ یہ سب مت کریے. ان کے بھی کارن وہی تھے, انہوں نے بھی بولا کہ ہم ایک دم نہیں چاہتے یہ, بلکہ یہ پاردرشتا کم کرے گا, یہ کالا دھن اندر لائے گا اور الیکشن میں فورن فنڈنگ بھی آنے کا رسک ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی ایک دم نہیں ہے.
یہ رپورٹیں آر ٹی آئی ایکٹیوسٹ کوموڈور لوکیش پترا کے پچھلے 2 سال میں وبھن منترالیوں کے جوابوں پر آدھارت ہیں. آروپ ہے کہ مارچ 2018 میں الیکٹورل بانڈز کی پہلی بکری میں سے 95% راجنیتک چندہ بھارتی جنتا پارٹی کو گیا. سنسد میں کانگریس کے منیش تیواری نے یہ مدعا اٹھایا.
یہ اسکیم صرف لوک سبھا کے جو عام چناؤ ہے اس تک سیمت تھی, پر وڈمبنا کی بات ہے 11 اپریل 2018 کو کرناٹک کے چناؤ کے ٹھیک پہلے پردھان منتری کاریالے کے نردیش سے
نام مت لیں بنا
پردھان منتری.
ادھر انویسٹمنٹ بینکر سوشیل کیڈیا نے ایک لیکھ میں نتن سیٹھی کی رپورٹوں پر سوال اٹھائے ہیں.
ایک طرف وہ ہنگامہ مچا رہے ہیں کہ یہ الیکٹورل بانڈز کمپلیٹلی انونیمس ہے, پاردرشتا نہیں ہے اور اس کے کارن بلیک منی سسٹم میں بے تحاشا گھس جائے گا. دوسرے ہی پیس میں وہ لکھتے ہیں کہ الیکٹورل بانڈز انونیمس نہیں ہے, ان بانڈز کے اوپر میں کسی پرکار کی وششت سیاہی سے سیریل نمبر لگے ہیں اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا جہاں سے ایشو ہوتے ہیں وہ ٹریک کر سکتی ہے. الیکٹورل بانڈ کی سب سے بڑی پہل جو ہوئی ہے بھارتی راجنیتی کو صاف ستھرا کرنے میں کہ دان کرتا کا نام گھوشت نہیں کرنا پڑے گا پولیٹیکل پارٹی کو اپنی کتابوں پر پولیٹیکل پارٹی کو کتنا پیسہ ملا ہے وہ بینکنگ سسٹم سے آئے گا اور اس پیسے کا حساب اس کو اپنے خرچے میں الیکشن کمیشن کو دینا ہے. یہ کلینزنگ اپ ہو رہی ہے اور اگر اس کے بیچ میں بھی کوئی ہینکی پینکی ہو سکتی ہے تو 15 دن کی ایک شیلف لائف ہے.
کوموڈور لوکیش بترا کہتے ہیں ان کا کام تھا اس وشے کو لوگوں کے سامنے لانا اور انہوں نے وہی کیا ہے. ونیت کھرے, بی بی سی دلی.
सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड समेत 5 सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला किया है। बुधवार रात को एक संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की जानकारी दी। अब इन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से नीचे रह जाएगी। इस बारे में और जानकारी के लिए मैंने बात की आर्थिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी से और सबसे पहले पूछा कि सरकार के इस फैसले को वो कैसे देखते हैं।
अब फैसला तो देखिए, अगर हम लोगों ने इन प्रिंसिपल ये बात 1991 में तय कर ली थी कि भारत सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए, भारत सरकार को सरकार चलानी चाहिए और उसको उन सभी धंधों से बाहर आ जाना चाहिए जो राष्ट्रीय हित के नहीं है। और अगर आप ईमानदारी से पूछें तो सरकार के पास दो ही काम होने चाहिए, एक उसको शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, दूसरा उसको लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी चाहिए। ये अगर सरकार करे और साथ में कानून व्यवस्था पर नजर रखे, ये तीन काम के अलावा सरकार जिस भी काम में हाथ डाल रही है वो उसके काम नहीं है। तो इस हिसाब से फैसला तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है कि ये फैसला गलत हो गया है, लेकिन प्रश्न ये है 1991 में तय हुआ था कि हम विनिवेश करेंगे और आज 2019 में 28 साल बाद भी अभी इस सवाल पे डिबेट चल रही है इस देश में कि कितना विनिवेश होना चाहिए, किसका होना चाहिए, कब होना चाहिए। तो प्रक्रिया पे बहुत सारे सवाल हैं।
आज की जो अर्थव्यवस्था है भारत की, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तमाम आंकड़े ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, मंदी है, तो क्या इस फैसले से उसको जोड़ना चाहिए, क्या ये सही होगा?
ये बिल्कुल जोड़ना चाहिए और ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इस पर हमारे पूरे देश को बहुत गंभीरता से विचार करना होगा कि सरकारों ने ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, दरअसल क्या है, ये सरकार की संपत्ति बेची जा रही है, इसको बेचने के बाद सरकार उस पैसे का क्या करती है, ये बहुत सबसे गंभीर सवाल है और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। ये उस तरह है कि जैसे आप अपने घर का सामान बेच बेच कर घर का खर्चा चला रहे हैं। अब एक विनिवेश मंत्रालय वाजपेयी जी की सरकार में बन गया था, एनडीए ने बनाया, उससे पहले विनिवेश मंत्रालय नहीं था, लेकिन तब वो मंत्रालय बना, अब तक चल रहा है। ये जैसा मैंने कहा 28 साल में नहीं हो पाया है कि जो कुछ बेचना था बेच दें। अगर जिस चीज में आपको नहीं रहना है, जो काम आपको करना नहीं है, उस बिजनेस में इतने दिनों तक क्यों लटके हुए हैं, क्यों नहीं बेच पा रहे हैं, एक अलग सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि भारत सरकार के बजट में हर बार एक आंकड़ा आता है कि हम विनिवेश से इतनी कमाई करेंगे, यानी हिस्सेदारी बेचकर इतना कमाई। कोई भी परिवार हो, व्यापार हो, कोई भी काम हो, वो सामान बेच बेच के नहीं चल सकता है। तो सरकार अपनी कमाई जहां से होनी है, जो उसके रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, आमदनी जहां से आनी चाहिए, टैक्स कलेक्शन से आए, विकास बढ़ा के आए, उसके आने के बजाय वो गैप को भरने के लिए हर बार इस्तेमाल करती है विनिवेश को। इसीलिए इसका टारगेट ऐसे रखा जाता है सालाना हिसाब से कि इस बार के बजट में दिखाने के लिए कुछ मिल जाए, अगले साल का अगले साल देखा जाएगा। तो इस बार बीपीसीएल और शिपिंग कॉरपोरेशन शिकार मिल गए हैं, इस बार का बजट निकल जाएगा। जो 1,04,000 करोड़ का टारगेट इन्होंने दिया है, उसमें से अगर कल का बाजार भाव देखते हैं आप, तो 84,000 करोड़ रुपए इन तीन कंपनियों से निकलने हैं जो लिस्टेड कंपनियां हैं, लेकिन 5% के लगभग की गिरावट आज के बाजार भाव में आ चुकी है। जिस दिन तक ये विनिवेश एक्चुअली करेंगे, उस दिन तक कितनी गिरावट आ चुकी होगी पता नहीं है अभी।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
दिल्ली का पानी आखिर कितना प्रदूषित है? भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने शहर के पानी की गुणवत्ता को लेकर प्रदर्शन किया। कुछ दिनों पहले ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ने इस बाबत एक रिपोर्ट जारी की थी। आज दोपहर बाद दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाँच के मानकों को लेकर कई सवाल खड़ा किए। इस पूरे विवाद पर सुनिए फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
आपको जैसा मालूम होगा कि पिछले दिनों केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक दिल्ली का पानी सबसे खराब है और कई मानकों पर खरा नहीं उतरता है, जबकि मुंबई का पानी पूरे देश भर में सबसे बेहतर है। और भी कई जगहों से सैंपल लिए गए थे, जैसे चेन्नई से सैंपल लिए गए थे। चूँकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विपक्षी दल की सरकार है, तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये पूरी रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। उसके बाद रामविलास पासवान जो केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया कि ये किसी तरह की कोई भी राजनीति इसमें नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट भी जारी की 11 लोगों की, कि इन जगहों से जो है वो सैंपल लिए गए थे, जिसके आधार पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये टेस्ट किए हैं। बीबीसी ने ये जानने की कोशिश की कि ये जो 11 जगहों से जो ये सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, इनमें जाके देखा जाए कि इनमें किन लोगों के यहाँ से सैंपल लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं, उसमें क्या तरीका अपनाया गया था। तो सबसे पहले हमने इसके लिए चुना अशोक नगर में रहने वाली अंजू जी से। आप अंजू जी हैं?
हाँ जी, मेरा नाम अंजू है।
और ये कौन सा इलाका है?
ये गली नंबर 4 अशोक नगर रोहतास नगर।
हम ये जानना चाहते कि आपके यहाँ से सैंपल कलेक्ट करने के लिए कोई आया था?
नहीं, हम भर के दे के आए थे वहाँ पे कि जब हमारे बच्चों को पानी, जो पानी आ रहा है हमारा, वही हमें शुद्ध नहीं मिल रहा।
तो ये बताइए कि आपने खुद से सैंपल भेजा था या उनकी तरफ से कोई सैंपल, कैसे हुआ?
हमने खुद सैंपल भेजा था, हमने उन्हें अप्लाई की जाके। इतना गंदा पानी है, पानी ऐसा था जैसे ये नाली देख रहे हो ना, इतना गंदा पानी आता था।
जो शिकायत जो आपने की थी, तो शिकायत सीधे आप केंद्रीय मंत्रालय के पास करने के लिए गई? मतलब आपने कोई लोकल, आपका वार्ड काउंसिलर या कोई एमपी, कोई विधायक या दिल्ली सरकार में जो लोग हैं, दिल्ली जल बोर्ड, उसको शिकायत नहीं की? सीधे जाके आपने वहाँ केंद्रीय मंत्रालय में रामविलास पासवान जी के यहाँ शिकायत की?
हाँ जी, उन्हीं को हमने जानते थोड़े वो, तो उन्हीं के रामविलास पासवान जी को मैंने कंप्लेंट की थी कि हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला कि अपना सैंपल भर के भेजो हमें, हम शिकायत करेंगे।
आपका शुभ नाम जान?
मेरा नाम सुनीता है
जी।
हाँ जी।
और सुनीता जी, आप भी गई थी इनके साथ रामविलास पासवान?
किसी को बताया ही नहीं है। पासवान जी को ये ऐसे जानती हैं क्योंकि ये इलेक्शन लड़ चुकी है निगम पार्षद का, सिटी चुनाव चिन्ह से ये इलेक्शन लड़ चुके हैं, इसलिए ये जानती है। और इन्होंने गली में किसी को भी नहीं बताया कि भाई कंप्लेन करने चलो।
बिल्कुल साफ आ रहा पानी, शिकायत फालतू में बेकार में करो तो क्या फायदा। हाँ, हमारी टंकी से लिया गया पानी, साफ पानी आ रहा है बिल्कुल।
1-2 महीने पहले था, अब नहीं है।
अमित नगर है, वहाँ कर, वहाँ के लोग यहाँ से पानी भरकर लेके जाते हैं कैन में, और तो क्यों ले जा रहे हैं? अगर वो, अगर साफ पानी है तभी तो लेके जा रहे हैं।
सामने के इलाके में गंदा पानी आ रहा
है? नहीं,
यूपी एरिया लग जाता है,
यूपी एरिया लग जाता।
तो फैसल मोहम्मद अली बता रहे थे पानी के बारे में। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनना अब लगभग तय है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चौहान ने आज इसकी जानकारी देते हुए कहा,
पिछले 21 दिनों से महाराष्ट्र में चुनाव के बाद में जो अस्थिर परिस्थिति है, उसे तुरंत समाप्त करने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के बीच में आज प्रदीर्घ चर्चा हुई। चर्चा सकारात्मक थी और अभी और कुछ बातें होनी है, वो तुरंत आज या कल में चालू रहेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार, पर्यायी सरकार की व्यवस्था जल्दी से जल्दी अस्तित्व में आएगी।
और अब आपकी चिट्ठियों का जवाब।
आपकी राय, नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और साथ में मेरे हैं सूर्यांशी पांडे।
नमस्कार।
आज आपके खजाने में क्या है सूर्यांशी?
आज हमारे खजाने में बहुत सारे खत आए हैं, बहुत सारे पीले पोस्ट कार्ड,
पीले पोस्ट कार्ड ज्यादा देख रहा हूँ। हाँ। मैं आज डाक से आई चिट्ठियां जो है हमारे दूर दराज के जो श्रोता हैं, उन्होंने जो लिखी है वो इकट्ठा हमारे पास पहुंची है। आज लगता है कहीं ये रुकी हुई थी।
हाँ। और अब जब चल पड़ी है तो सबसे पहला खत जो है वो असद अली का लेते हैं, जो रामपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। और वो लिखते हैं कि शाम को थका हारा किसान जब खेत से घर लौटता है तो चारपाई पर लेटकर बीबीसी के कार्यक्रम सुनता है, उसकी दिन भर की थकान उतर जाती है।
क्या बात है, ये बहुत पुराने श्रोता है हमारे असद जी, रामपुर से लिखते हैं और पोस्ट कार्ड लिखते हैं हमेशा, और हमेशा किसानों की बात करते हैं। किसानों की जो चिंता है, अगर मानसून ज्यादा आ गया है, बारिश ज्यादा हो गई है या सूखा पड़ रहा है, इनकी चिट्ठियों में वो सब बात आती है। तो असद भाई, कभी दिल्ली आना हो तो जरूर हमारे दफ्तर में आइए।
और आगे बढ़े तो शत्रुघ्न सिंह चौहान उन्नाव उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि 1965 में पहली बार बीबीसी सुना था, तब भारत में अखबार, आकाशवाणी और बीबीसी ही समाचार के माध्यम थे। अब तो बहुत सारे माध्यम हो गए हैं और कहीं ना कहीं बीबीसी की वो प्रतिष्ठा नहीं रही, और इसके कई कारण उन्होंने गिनाए हैं, जिसमें से एक कारण है कि बीबीसी मोदी सहित भारत के प्रति अच्छा नजरिया नहीं रखता है, और 370 पर जो कवरेज की वो उन्हें संतुलित नहीं लगी।
जी, तो ये हमारे श्रोता है, इनका नाम आपने बताया शत्रुघ्न सिंह चौहान, नवाबगंज उत्तर प्रदेश से। तो चौहान साहब, आपने इस तरह की चिट्ठियां पहले भी सुनी होंगी हमारे कार्यक्रम में। कुछ श्रोता कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं या भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, कुछ लोग कहते हैं भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, लेकिन अगर लगातार हमारे कार्यक्रम आप सुनेंगे, आपकी राय भी सुनेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि दरअसल ये सच नहीं है, हम न तो किसी के समर्थक हैं न किसी के विरोधी हैं, जैसी खबरें होती हैं जो कुछ समाज में होता है वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, इस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे, सच को जैसा वो है वैसा ही दिखाएंगे। कई बार सच अगर हमारे माफिक नहीं आता है तो हम उसे पसंद नहीं करते हैं, जब कभी हमारे माफिक आता है तो हम कहते हैं वाह वाह बहुत अच्छा है। तो ये आप थोड़ा सा और गौर से सुनना शुरू कीजिए, हालांकि पुराने श्रोता हैं, 1965 में आप पहली बार सुन रहे थे, तो समाज में जिस जिस तरह के बदलाव होते हैं उनका रिफ्लेक्शन हम यहाँ देते हैं।
और पूरी तारीख के साथ कौन सा कार्यक्रम पसंद आया ये लिखा है कोमेश्वर कुमार ने, जो धमतरी से लिखते हैं, छत्तीसगढ़ से, और ये लिखते हैं कि 10 नवंबर के दिन भर कार्यक्रम में अयोध्या के कुछ मुस्लिम युवाओं से जुबैर अहमद की जो बातचीत थी वो दिल को छू गई, भीतर एक हुक सी उठी।
क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ये कार्यक्रम ये बातचीत पसंद आई तो हमें भी इसकी बहुत खुशी है।
आगे बढ़े तो ये एक खत भेजा है, इनका नाम है गणेश प्रसाद हुजदार नेपाल से, और ये लिखते हैं कि रेहान फजल द्वारा प्रस्तुति विवेचना में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में सुनकर दिल बाग बाग हो गया। इसी तरह मानसी दास द्वारा प्रस्तुत दुनिया जहां में बोलिविया के राजनीतिक संकट के बारे में सुनकर दुख हुआ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मानसी दास ने जो कार्यक्रम कल प्रस्तुत किया था उस पर और भी चिट्ठियां आई हैं, आप अगर आपकी नजर पड़े तो उनको भी पढ़ दें।
तो मानसी दास के जो और मुरीद हैं उनके नाम है सादिक आजमी, ये कौड़िया आजमगढ़ से लिखते हैं और ये भी कार्यक्रम दुनिया जहां की खूब तारीफ करते नजर आ रहे हैं। जंग बहादुर सिंह जमशेदपुर से लिखते हैं,
गोल पहाड़ी जमशेदपुर कहिए, नहीं तो जंग बहादुर जी नाराज हो जाएंगे।
मैं क्षमा चाहती हूँ, गोल पहाड़ी जमशेदपुर से लिखते हैं कि लगता है मानसी दास जी ने ठान लिया है कि लैटिन अमरीकी देशों के बारे में एक एक करके हम श्रोताओं को जानकारी देंगे।
देखिए बीबीसी की यही खूबी है और जंग बहादुर जी हमारे जो श्रोता हैं उन जैसे श्रोताओं को मालूम है कि चाहे बोलीविया हो, लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो या मंगोलिया हो, बीबीसी रेडियो में हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे श्रोताओं को पूरी दुनिया की जानकारी मिले, सिर्फ अपने मोहल्ले या अपने प्रदेश या अपने राज्य की ही नहीं या अपने राष्ट्र की ही नहीं बल्कि दुनिया में क्या हो रहा है ये पता चले, और इसकी हमारी कोशिश रहती है। आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आते हैं, मेहनत बहुत लगती है, मानसी दास बताएंगे आपको, तो हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे पास इस तरह की चिट्ठियाँ आती हैं।
और किशनगंज बिहार से गौतम दत्ता ने भी मानसी दास की ही तारीफ में लिखा था।
क्या लिखा है इन्होंने, ये तो नाम है, एक तो सेंटेंस, एक तो वाक्य पढ़ दीजिए।
हाँ, ये इन्होंने लिखा है कि बुधवार शाम की सभा में दुनिया जहां में बोलीविया संकट के बारे में सुना, प्रस्तुतकर्ता अपना परिचय दिए बिना बेहतरीन तरीके से दुनिया जहां को सुना गई।
उनकी मीठी आवाज से पता चल गया। उनको इन्होंने आगे लिखा है जैसा कि मैं पढ़ सकता हूँ कि और कोई नहीं बल्कि मानसी दास है। तो गौतम दत्ता जी आप तो लगातार सुनते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, मैं और भी श्रोताओं से गुजारिश करूंगा कि अपनी राय अपनी चिट्ठी हम तक जरूर पहुंचाएं। पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। भारत और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से कोलकाता के ईडन्स गार्डन में खेला जाना है। ये पहला मौका है जब दोनों टीमें डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेलेंगी। इस टेस्ट को यादगार बनाने के लिए ईडन्स गार्डन्स में खास तैयारियां की जा रही हैं। मैच का गवाह बनने कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, जिसमें बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के अलावा सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले शामिल हैं। टेस्ट क्रिकेट में नई जान फूंकने की कोशिश में भारत पहली बार पिंक बॉल से खेलने उतर रहा है। इस मैच के लिए पहले चार दिन के टिकट बिक चुके हैं। ऐसे में मुकाबले में उतरने के लिए भारतीय कप्तान विराट कोहली भी खासे उत्साहित हैं।
आई थिंक इससे पहले ईडन में इतनी एक्साइटमेंट और इतनी बज इंडिया पाकिस्तान टी20 गेम की थी जो हम लास्ट वर्ल्ड कप में खेले थे, और वहाँ पे भी बड़े बड़े दिग्गज आए थे और सबकी फेलिसिटेशन हुई और पैक स्टेडियम था, तो आई थिंक उस तरीके का ही एटमॉस्फेयर होगा। बहुत डॉन्टिंग इंटिमिडेटिंग भी हो सकता है लेकिन बहुत एक्साइटिंग भी है, मतलब अगर आप बैटिंग भी कर रहे हैं, अगर आप बॉलिंग भी कर रहे हैं तो जो बैट्समैन जाएंगे बाहर उनके लिए पूरा सपोर्ट होगा, जो बॉलर अपने मार्क पे खड़े हैं उनके लिए 80,000 लोग चीयर कर रहे हैं नई बॉल से, और वैसे भी यू नो पिंक बॉल से खेलना इतना आसान नहीं है तो बॉलर्स को और बूस्ट मिलेगा। तो आई थिंक काफ़ी पहला सेशन, मुझे लगता है पहला घंटा जो होगा काफ़ी एक्साइटिंग क्रिकेट होगी क्योंकि वो एनर्जी इतनी हाई होगी और लोगों को भी बहुत मजा आएगा। तो आई थिंक ये ऑब्वियसली एक लैंडमार्क ओकेजन है इंडियन क्रिकेट में, और जैसे मैंने पहले बोला कि हम लोग लकी हैं कि हम लोग इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं, और ये सबके लिए एक ऑनर की बात है।
इस पूरे उत्साह के बीच भारतीय टीम घरेलू सीरीज में लगातार 12वीं जीत की तैयारी में है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। और वहीं भारतीय युवा निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में देश को पहला गोल्ड दिलाया। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जूनियर वर्ल्ड कप रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। भारत की ही इला वैनल वाला रिवान ने 10 मीटर राइफल में दूसरा गोल्ड मेडल जीता। इन दोनों के अलावा पुरुष वर्ग में दिव्यांश पवार ने भी 10 मीटर राइफल में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
तो जैसा कि आपने राखी शर्मा की इस रिपोर्ट में सुना कि कल जो टेस्ट मैच शुरू होगा उसमें पिंक बॉल का इस्तेमाल होगा। पिंक बॉल के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की अपने साथी भरत शर्मा से।
इकबाल, इसके कॉन्सेप्ट या इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि टेस्ट वनडे और T20 क्रिकेट के कंपैरिजन में टेस्ट क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी घटती दिख रही थी। तो ICC के पास और जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके पास ये चिंता थी, उनके सामने ये चिंता थी कि किस तरह से टेस्ट क्रिकेट में लोगों की रुचि बनाई जा सके। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट 5 दिन खेला जाता है, दिन के वक्त खेला जाता है, तो दर्शकों की कमी स्वाभाविक थी। इसलिए इसको प्राइम टाइम यानी दोपहर से शाम या देर शाम तक चलाने का फैसला किया गया। इसी का नाम है डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच। साल 2015 में ऐसा पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था एडिलेड में, और भारत कल 22 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में अपना पहला डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेलेगा। इसमें गेंद इस्तेमाल होती है पिंक बॉल, गुलाबी गेंद। मेरे हाथ में इस समय एक हाथ में लाल गेंद है, एक हाथ में गुलाबी गेंद है।
माफ करेगा श्रोता, तो सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो जरूर आपकी बातों से इमेजिन कर पाएंगे कि इन दोनों गेंदों में क्या फर्क है।
इन दोनों जो बॉल हैं, जो दोनों गेंदे हैं, इनके अंदर कोई भी फर्क नहीं होता है। असली फर्क है बाहर की तरफ। जो आप देख पा रहे हैं कि एक लाल है एक गुलाबी है, तो रंग का फेर हो गया, जो रंग है वो डिफरेंट है दोनों में। लेकिन जो दूसरे जो फर्क है वो ये है कि लाल गेंद पर जो सीम होती है, सिलाई होती है, वो सफेद रंग में होती है, और गुलाबी गेंद की जो सिलाई है वो काले रंग की होती है। जो दूसरा बड़ा फर्क है वो ये कि लाल गेंद पर वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, गुलाबी गेंद के साथ ऐसा नहीं होता। जानकार कहते हैं कि लाल गेंद पर वैक्स लगाने से लाल गेंद की चमक बनी रहती है, जबकि गुलाबी गेंद पर अगर वैक्स लगाया जाएगा तो वो काले रंग में तब्दील होने लगती है। इस वजह से इस पे PU कोट लगाया जाता है। इसके अलावा अंदर दोनों के कॉट्सवूल और कॉक रहता है, वहाँ कोई अंतर नहीं है। बाहर का फर्क है, गुलाबी गेंद जो है उसको ज्यादा वक्त तक नया रखा जा सके, इस वजह से इस पे PU कोट का इस्तेमाल होता है, और जब तक गेंद नई रहती है तब तक गेंदबाजों के लिए फायदा है।
भरत, आपने ये जो बातें बताई वो काफ़ी तकनीकी है, लेकिन अगर मैं एक आम क्रिकेट के शौकीन से, क्रिकेट देखने समझने खेलने वालों की नज़र से पूछूं आपसे सवाल, तो जो बेसिक चीज़ें होती क्रिकेट में कि गेंद ज़्यादा स्विंग करेगी, कम स्विंग करेगी, क्या वेदर पर उसका फ़ायदा होगा, रिवर्स स्विंग में क्या गुलाबी गेंद और लाल गेंद में फ़र्क होगा, ये जो आम चीज़ें हैं क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा?
निश्चित रूप से फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो डे वाला होता है वो दिन से दिन सवेरे 9 या 10 बजे से लेकर शाम 4 या 5 या 6 बजे तक खेला जाता है, लेकिन डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच 1 बजे या 2 बजे के बाद खेला जाएगा। उसमें कुछ वक्त दिन का उजाला रहता है और कुछ वक्त फिर फ्लड लाइट्स की रोशनी रहेगी, तो उसमें गुलाबी गेंद ज़्यादा बेहतर दिखती है। सफ़ेद गेंद का इस्तेमाल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में कपड़े, जो खिलाड़ियों की वर्दियाँ हैं, वो सफ़ेद रंग में होती हैं, इसलिए गुलाबी गेंद जो है वो ढलती धूप और फ्लड लाइट्स में ज़्यादा बेहतर दिखती है, इसलिए गुलाबी गेंद इस्तेमाल होती है। जहाँ तक स्विंग की बात आपने की, तो ऐसा माना जाता है कि गुलाबी गेंद ज़्यादा वक्त तक नहीं रहती है। जब वो नहीं रहेगी तो जो शुरुआत में जो तेज़ गेंदबाज बॉलिंग कर रहे होंगे उन्हें ज़्यादा स्विंग मिलने की उम्मीद जताई जाती है। नुकसान ये है कि क्योंकि गेंद धीमे धीमे पुरानी पड़ती है तो रिवर्स स्विंग मिलने में मुश्किल होगी।
तो ये थे भरत शर्मा, और चलते चलते एक बार फिर सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। कांग्रेस ने आज संसद में इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर कहा कि इसके जरिए कारोबारी और अमीर लोग सत्ताधारी पार्टी को चंदा देकर राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे। बीते 10 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विक्टोरिया में रेड अलर्ट जारी किया है। पूरे देश में अग्निशमन कर्मचारी करीब 200 जगहों पर जंगलों में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने कहा है कि एजेंसी के अधिकारियों को ईरान में जो यूरेनियम मिला था उसके बारे में अब तक ईरान ने कोई जानकारी नहीं दी है। अमेरिका के एक राजदूत गॉर्डन सॉनलैंड ने आज प्रतिनिधि सभा में कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जो बिडेन के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर दबाव बनाया था, वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रही महाभियोग जांच से जुड़ी सार्वजनिक सुनवाई में पेश हुए थे। इतिहास में पहली बार इसराइल के राष्ट्रपति रूविन रिवलिन ने औपचारिक तौर पर देश की संसद को नई सरकार बनाने के लिए दखल देने के लिए कहा है। नई सरकार बनाने के लिए संसद के पास 3 सप्ताह का वक्त है। BBC समाचार।
तो दिन भर की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली थी तिलक भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।